SBS के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। आज सोमवार से संसद में बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखेंगी। वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार करने के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। 5 राज्यों के चुनावों के बीच हो रहे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस सत्र में पेगासस जासूसी, चीन द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ किसानों के मुद्दे छाए रहने के आसार हैं। विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को चुनावी सभाओं में भी उठा रही हैं। गत शुक्रवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक नई खोजी रिपोर्ट से इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस फिर से चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेगासस की खरीद प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में इजरायल यात्रा के दौरान हुए $2 अरब के रक्षा सौदे में शामिल थी, जिसकी एवज में भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के पक्ष में वोट दिया था। पेगासस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता रहे वकील श्री M.L. शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का संज्ञान लेने और इसराइल के साथ सौदे में शामिल सभी के खिलाफ FIR करने का आग्रह किया है। इसके अलावा याचिका में भारत इसराइल के बीच हुए इस सौदे की जांच की मांग भी की गई है। विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस ने इस खुलासे के बाद मोदी सरकार पर देशद्रोह और संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह संसद के आगामी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बारे में क्या कहा।
मोदी गवर्नमेंट इज डिप्लॉयर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पाइंग एंड स्नूपिंग रैकेट थ्रू इजरायली सर्विलेंस स्पाईवेयर पेगासस एंड द प्राइम मिनिस्टर Shri Narendra Modi is himself involved. This is a brazen hijack of democracy and an act of treason. Modi government purchased Pegasus spyware in the year 2017 along with other military technologies as the centerpiece of a package including weapons and intelligence gear worth roughly $2 billion from Israel during Prime Minister Modi's visit. It is no coincidence that the budget of National Security Council Secretariat, which reports to NSA, suddenly went up from 33 crore to 333 crore in the year 2017.
हालांकि मोदी सरकार की तरफ से इस विषय में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे पूर्व राजनयिक श्री सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक परिषद UNSOC में मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक फिलिस्तीनी NGO को पेगासस से जोड़कर न्यूयॉर्क टाइम्स ने गंभीर गलती की है। मोदी सरकार में मंत्री श्री VK सिंह ने एक ट्वीट में कहा, क्या कोई न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा कर सकता है? उसे बतौर सुपारी मीडिया जाना जाता है। ज्ञात रहे कि मोदी सरकार के सारे तर्कों को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाई थी। यह समिति पेगासस के निशाने पर आए लोगों से जानकारी इकट्ठी करने की प्रक्रिया में है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू गणतंत्र समारोह का समापन 29 जनवरी के दिन राजपथ के विजय चौक पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट परेड के साथ हुआ। तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों के करीब 1000 वाद्यकारों ने 26 जोशीली धुनें बजाकर सब लोगों का मन मोह लिया। इस बार बीटिंग द रिट्रीट की खासियत 1000 छोटे ड्रोन विमानों का प्रदर्शन रहा, जिन्होंने शाम ढलते अंधेरा छाने के साथ आकाश में धुनों के साथ जुगलबंदी करते हुए कई करतब दिखाए। परेड के आखिर में ए मेरे वतन के लोगों गीत की धुन बजाई गई। कहा जाता है कि सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने जब मुंबई के आज़ाद मैदान में यह गीत पहली बार गाया था तो इसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भावुक हो उठे थे। लेकिन कई लोगों को 1950 से लगातार बज रही अबाइड विद मी धुन के बीटिंग द रिट्रीट में शामिल न किए जाने से निराशा हुई। 19वीं शताब्दी में एक स्कॉटिश एंग्लिकन मिनिस्टर हेनरी फ्रांसिस लाइट द्वारा रचित ईश्वर को समर्पित यह गीत गांधी जी को बहुत प्रिय था। इसे परेड के अंत में तिरंगा उतारने के दौरान बजाया जाता था। आइए सुनते हैं गुजरे जमाने की इस धुन का एक अंश। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण में गांधी जी को याद किया।
ये 2022 की पहली मन की बात है। आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है।
कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। इस ट्वीट पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने श्री राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया।
केवल और केवल एक ही रिकॉर्ड प्लेयर जो 2014 से वो चला रहे हैं, वो केवल और केवल घृणा और हेट्रेट की तरफ इंगित करता है। वो घृणा से भरे हुए हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं।
और आइए अब कुछ चुनाव समाचार। पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। रविवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची में कांग्रेस ने श्री चन्नी को भदौर विधानसभा से टिकट दिया। इससे पहले उन्हें चमकौर साहिब सीट से उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। चन्नी के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया। केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा, मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चमकौर साहिब से चन्नी हार रहे हैं। आज कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि सर्वे सही है? हालांकि भदौर सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ केवल 20% वोट मिले थे। श्री चन्नी को भदौर से टिकट दिए जाने की वजह मालवा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रभाव को कम करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। मणिपुर में भाजपा द्वारा सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद हंगामा हो गया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही बीजेपी का टिकट मिल पाया। इस्तीफों के दौर के साथ मायूस उम्मीदवारों के समर्थकों ने जमकर विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले भी जलाए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।